आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम अध्याय में भगवान मनु गृहस्थांतर्गत भक्षा भक्ष देह शुद्धि द्रव्य शुद्धि स्त्री धर्म आदि के विषयों में वर्णन करते हुए कहते हैं, सबसे पहले श्लोक में ऋषियों ने भृगु जी से प्रश्न किया, श्रुत्वेतानु विषयो धर्मान् स्नातकस्य थोदितान् इदमूर्चुर् महात्मान मनल प्रभवम् भृगुम्। यथा उदितान् पूर्व कहे गए स्नातकस्य धर्मान् श्रुत्वा, स्नातक गृहस्थ के कर्तव्यों को सुनकर ऋषयः ऋषि लोग महात्मनाम अनल प्रभवम भृगुम उचुः, महात्मा तेजस्वी महर्षि भृगु कहते हैं, एवं यथोक्तम विप्राणाम स्वधर्ममनुतिष्ठताम कथम मृत्यु प्रभवति वेदशास्त्र विदाम प्रभु। प्रभु हे भगवन, एवं यथोक्तम स्वधर्मम अनुष्ठिताम, इस शास्त्र में कहे हुए अपने धर्मों का पालन करने वाले वेद शास्त्र विदाम विप्राणाम, वेद शास्त्र के विद्वानों की मृत्यु कथम प्रभवति, मृत्यु कैसे हो जाती है।
सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः श्रूयताम येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघसि मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति सः,
अर्थात वह धर्मात्मा मानवः भृगुः तान महर्षीन उवाच, धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन ऋषियों से कहते हैं, येन दोषेण विप्राण मृत्यु जिघांसति, जिस दोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मार देती है उन्हें सुनो श्रूयताम। वो कौन से कारण महर्षि भृगु बताते हैं,
अनाभ्यासेन वेदानां आचरस्य च वर्जनात् आलस्यादन्न दोषाश्च मृत्युर्विप्राण जिघांसति।
वेदानाम अनभ्यासेन, वेदों का अभ्यास छोड़ देने से और आचरस्य वर्जनात् सदाचार को छोड़ देने से, आलस्यात् आलस्य के कारण, अन्न दोषात् च और अन्न दोष के कारण मृत्यु विप्राण जिघांसति, मृत्यु विद्वानों को मारना चाहती है। यहां पर विद्वानों ने इस पर विचार करते हुए इनको प्रक्षिप्त बताया है, इसके निम्न कारण विद्वानों ने बताए हैं। इस श्लोकों के प्रक्षिप्त होने का आधार उन्होंने शैलीगत बताया है। पहला आधार शैलीगत बताते हुए कहते हैं कि वर्णन शैली से यह स्पष्ट होता है कि इनमें ऋषि लोग भृगु से प्रश्न कर रहे हैं और भृगु उसका उत्तर दे रहे हैं, इस प्रकार यह श्लोक मनु ने नहीं कहा। दूसरा कारण विद्वान प्रसंग विरोध बताते हैं, क्योंकि भक्षाभक्ष संबंधी प्रश्न प्रसंग मनुस्मृत के अग्रिम श्लोकों में सटीक नहीं बैठते, क्योंकि जब भक्षाभक्ष संबंधी विधान ब्राह्मणों के लिए बताया गया जा रहा है, जैसे अभक्षणात् दुजातीनां स्नो स्नेहाक्तं जुतातिभिः इत्यादि प्रश्नों से ऐसा लगता है कि भक्षाभक्ष प्रसंग में वर्णित पदार्थों से उसकी वर्णन शैली से यह स्पष्ट है कि यह प्रसंग न तो चार श्लोकों में संबद्ध है और न इसका यह उत्तर ही है। तीसरा कारण अवांतर विदोध बताते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि इन चारों श्लोकों में प्रदर्शित प्रश्न और उत्तर में भी परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी विद्वान की रचना नहीं है। इस प्रकार से इन श्लोकों को प्रक्षिप्त बताते हुए अगले पंचम श्लोक को शुद्ध मानते हुए, जिसमें द्विजातियों के अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन किया गया है,
लशुनम गृंजनम चैव पान पलांडुम कवकानि च अभक्षाण द्विजातीनां मे अमेध्य प्रभवाणि च।
कहने का मतलब है लशुनम गृंजनम और पलांडुम अर्थात प्याज
च कवकानि कुकुरमुत्ता, लहसुन सलजम प्याज कुकुरमुत्ता छत्राक या कुमड़ा और अमेध्य प्रभावाणी अशुद्ध स्थान पर होने वाले सभी पदार्थ जैसे कुष्मांड इत्यादि,
द्विजाती नाम अभक्षाणी द्विजातियों के लिए अभक्ष्य हैं, अर्थात द्विज यानी क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और शूद्रों को मलिन विष्टा इत्यादि स्थान पर उत्पन्न साक इत्यादि को नहीं खाना चाहिए। यहां पर गुंजन का अर्थ सलजम है और इसको क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इस पर विद्वान कहते हैं कि ये उष्ण और दुर्गंध युक्त होता है और स्वाद में कटु होता है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
गुंजनम शिखमूलम च यवनेष्टम च वर्तुलम ग्रथिमूम ग्रंथिमूलम शिखाकंदम कंडम डिंडीरमोदकम गुंजनम कटुकुष्णम च दुर्गंधम गुलवनासनम।
ये लक्षण वर्तमान प्रसिद्ध पीत रक्त या कृष्णवर्ण और लंबे आकार वाले गाजर में नहीं घटते, इसलिए सलजम को ही मानना उचित है। छठे श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं,
लोहितान वृक्ष निर्यासान वृषश्च प्रभवांस तथा शीलुम गव्यम च पीयूषम प्रयत्नेन विवर्जयेत।
लोहितान वृक्ष निर्यासान लाल वृक्षों का गोंद तथा वृषण प्रभवान और वृक्षों को काटने से निकलने वाला रस सेलुम ल्यासौड़े का फल च गव्यम पेयूषम और गाय की पेवसी अर्थात खीस इन्हें प्रयत्नेन विवर्जयेत, प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। सातवें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं,
व्रथा क्रशर संयावम पयसा पोषमेव च अनुपाकृतमांशानि देवान्नानि हवीर्षि च।
व्रथा कुसर संयामम च पायसम अपूपम चैव, अर्थात देवताओं के उद्देश्य के बिना बताए गए तिल मिश्रित चावल हलवा खीर मालपुआ इत्यादि मंत्रों के उच्चारण के शुद्ध किए बिना नहीं खाना चाहिए और ऐसे मांस को नहीं खाना चाहिए जो मंत्रों के द्वारा शुद्ध न किया गया हो, और देवताओं के भोग के पदार्थ होम से पहले की हवि इन सबको छोड़ देना चाहिए। आठवें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं,
अनिर्दशायाम गोह क्षीर मौष्टमैक शफम तथा अविकम संधिनी क्षीरम विवत्सायाश गोपयः,
अर्थात अनिर्द शायाह गोह क्षीरम, ब्याई हुई गौ का पहले दिन 10 दिन का दूध, औष्ट्रम ऊंट का दूध, ऊटनी का दूध, तथा एक शफम घोड़ी आदि का दूध, अविकम भेड़ आदि का दूध, संध नीक्षीरम सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध, च और विवत्सायाह गोपयः जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को नहीं पीना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आरप्यानाम च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना स्त्री क्षीरं चैव वर्जानि सर्वशुक्लानि चैव हि, अर्थात माहिषं विना भैंस के दूध को छोड़कर सर्वेषां अरण्यानां मृगाणां सब जंगली पशुओं का दूध और स्त्री क्षीरं स्त्री का दूध वर्जानि वर्जित है, चैव और सर्वसुक्तानि सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं। अब भक्ष्य पदार्थों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं 10वें श्लोक में, दधिभक्षम च शक्तेषु सर्वम च दधिसंभवम यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैशुभैः, अर्थात शुक्तेषु खट्टे पदार्थों को, दधि च सर्वम दग्धि संभवम भक्ष्यम, दधि और दही से बनने वाले सभी छाछ इत्यादि पदार्थ, मक्खन इत्यादि, और यानी जितने पदार्थ सुभई है हितकारी या गुणकारक, पुष्प मूल फलई अभिशूयन्ते फूल मूल फल से तैयार किए जाते हैं वे सब खाने योग्य हैं। 10वें श्लोक में पुनः बताते हैं किन किन पदार्थों को खाना चाहिए। इसमें तरह तरह का मांसों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, क्रव्यादान छकुणान सर्वांस तथा ग्राम निवासिनः अनिर्दिष्टान शैव शफांस्तिष्टिभम च विवर्जयेत टिभम च विवर्जयेत, अर्थात क्रव्यादान कच्चा मांस खाने वाले गीध चील आदि का को, तथा सर्वान ग्रामवासिनः शकुनान सब गांव में रहने वाले कबूतर चिड़िया इत्यादि पक्षियों को, अनिर्दिष्टान एक शफान जिसका विधान किया गया ऐसे एक खुर वाले गधा आदि को, और टिट्टिभम विवर्जयेत टिटहरी पक्षी को का मांस नहीं खाना चाहिए। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रतुदान जालपादांश कोयष्टिनख बिष्करान निमज्जतश्च मत्स्यादान शौनम बल्लूरमेव च, अर्थात प्रदुतान चोंच से काट कर खाने वाले पक्षी कठफोड़ा इत्यादि, जलपादान जिनके पैर झिल्ली से जुड़े हों जो पानी में तैरते हैं, कोयष्टि कोहड़ा नामक पक्षी, नख विष्किरान खाने की वस्तुओं को नाखून से बिखेर कर खाने वाले तीतर इत्यादि पक्षियों को, और निमज्जतः मत्स्यादान पानी में गोता लगाकर मछलियों को खाने वाले पक्षी, शौनम कसाई खाने का मांस, च वल्लूरम अर्थात सूखा मांस अभक्ष होता है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बकम चैव बलाकाम च काकुलम खंजरीटकम मत्स्यादान विडवाराहांश्च मत्स्यानेव च संशयः, बकम बलाकाम काकुलम खंजरीटकम अर्थात बगुला बतख पहाड़ी कौवा खंजन पक्षी इनके मांस को, मत्स्यादान मछली खाने वाले मगरमच्छ आदि के मांस को, और विडवाराहन अर्थात विष्टा खाने वाले सुअर का इत्यादि का, च सर्वसाह एव मत्स्यान सभी मछलिये के मांस को नहीं खाना चाहिए।
यो यस्य मांसमस्नाति सतन्मांसाद उच्यते मत्स्यादः सर्वमांसादस् तस्मान् मत्स्यान् विवर्जयेत्।
क्यों मछली को छोड़ देना चाहिए? तो कहते हैं यह यस्य मांसमस्नाति जो उसके मांस को खाता है सह वह तत् मांसदः उच्यते वह उसके मांस को खाने वाला कहलाता है मत्स्यादः, किंतु मछलियों के मांस को खाने वाला सर्व मांसादः सर्व मांस भक्षी होता है। तस्माद् मत्स्यान् विवर्जयेत् इस कारण मछलियों का मांस नहीं खाना चाहिए।
पाठी नरो हिणा रोहिता वाद्यौ नियक्तौ हव्यकव्ययौ राजीव सिंह तुंडाश सशल्कांशैव सर्वसः।
अब किनको खाना चाहिए इस बारे में कहते हैं हव्य कव्ययौ नियक्तौ हव्य कव्य के लिए समर्पित पाठीन रोहितौ पाठीन और रोही रोहू मछली आद्यौ खा लेनी चाहिए। क्यों और किसको खाना चाहिए? राजीवान सिंहतुंडान सर्वसः सशल्कान एव राजीव सिंहतुंड और सब कांटेदार मछलियों के मांस को खा लेना चाहिए।
न भक्षयेदे कचरान अज्ञातांश मृगद्विजान अभक्षेस्वपि समुद्दिष्टान सर्वान पंजनकांस तथा।
अर्थात एक चरान अकेले विचरण करने वाले सर्प इत्यादि अज्ञातान मृगद्विजान जिनके मांस के गुण दोषों को का ज्ञान न हो ऐसे पशु पक्षियों का मांस भक्षेषु अपसमुद्दिष्टान भक्ष बताए गए पशु पक्षियों में भी जिनके गुण दोष का ज्ञान न हो तान सर्वान पंचनखान तथा सब पंचनखों जैसे बंदर लंगूर आदि का मांस नहीं खाना चाहिए।
18वें श्लोक में शाविधम सल्यकम गोधाम खड़ग कूर्म शशांस तथा भक्षान पंजनखे स्वाहु रनुदृष्टांशैव चैकतोदतः।
अर्थात स्वाविधम सल्यकम गोधाम च खड़गम कूर्म शशान शेह अर्थात शाही नामक पक्षी प्राणी जिसको कहते हैं सल्यक गोह गेंडा कछुआ खरगोश इन सब का मांस नहीं खाना चाहिए और पांच नाखूनों वालों का मांस नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान ऊंट को छोड़कर एक दोता एक तो दतः एक ओर के दांत वाले पशु को भक्षान आहु खाने योग्य कहा गया।
19वें श्लोक में छत्राकम विडवाराहम लशुनम ग्राम कुक्कुटम पलांडुम ग्रंजनम चैव मृत्वा जगधापते द्विजः।
अर्थात किसको किसको खाने से द्विज पतित हो जाते हैं इस बारे में कहते हैं छत्राकम विटवाराहम लसुनम ग्राम कुक्कुटम छत्राक अर्थात कुम्हड़े को खाने से विष्टा खाने वाले सुअर को खाने से लसुन खाने से गांव के मुर्गे को खाने से प्याज सलजम जानबूज कर खाने से द्विजह पतित द्विज अपने धर्म से पतित हो जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि द्विज केवल ब्राह्मण को ही नहीं कहते अपितु क्षत्रिय और वैश्य भी उसमें आते हैं अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए ऐसा मनुस्मृति का आदेश है। 20वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं
अमत्यैतानि खड्गजगन्ध्वा क्रक्षम संतापनम चरेत यति चांद्रायणम वापि शेषेषु अपशेदः।
अर्थात एतानि षट अमत्याः जगध्वा ऊपर वर्णित इन छह वस्तुओं को अनजाने में खाकर क्रक्षम संतापनम वा यति चांद्रायणम वा चरित, कष्टप्रद संतापन अथवा यति चांद्रायण नामक प्रायश्चित करना चाहिए। अपि शेषेषु और शेष बची वस्तुओं को खाकर अहह उपवसेत, एक दिन का उपवास करना चाहिए। अर्थात यदि भूल से भी कहीं कोमड़ा लहसुन प्याज इत्यादि खा ले तो प्राश्चित्त करे और एक दिन का उपवास रखे। संवत्सरैका मपि क्रक्षरेत् क्रक्ष द्विजोत्तम अज्ञात भुक्त शुद्ध्यरथम ज्ञातस्य तु विशेषतः। अर्थात द्विजोत्तम श्रेष्ठ द्विज, अज्ञात भुक्त शुद्ध्यरथम अनजाने में खाई गई अभक्ष्य वस्तुओं की शुद्धि के लिए, संवत्सरस्य एकम क्रक्षम चरेत, एक साल तक क्रक्ष नामक प्राश्चित्त करना चाहिए, कष्ट से रहना चाहिए। अर्थात तो भी तू ज्ञातस्य जानबूझकर खाए गए शुद्धि के लिए विशेषतः विशेष रूप से कहे गए प्राश्चित्तों को करना चाहिए। यज्ञार्थम ब्राह्मणैर वध्या प्रशस्ता मृग पक्षिणः भृत्यानां चैव भृत्यर्ग मगस्त्यो ह्याचरत्पुरा। ब्राह्मणैः अर्थात ब्राह्मणों को यज्ञार्थम यज्ञ के लिए, प्रशस्ता मृग पक्षिणः उत्तम पशुओं और पक्षियों को वध्या मार लेना चाहिए, और भृत्यानां भृत्यर्थम और अपने सेवकों का पालन पोषण करने के लिए, पुरा अगस्तः ही चरत, प्राचीन काल में महर्षि अगस्त ने ऐसा किया था। और 23वें श्लोक में पुनः महर्षि मनु कहते हैं, बभूहुरि पुरोडाश भक्ष्याणां मृग पक्षिणां पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च। अर्थात हि पुराणेषु अपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्र सर्वेषु, क्योंकि पहले भी यज्ञों और ब्राह्मण जातियों के संयुक्त यज्ञानुष्ठानों में भक्षाणाम मृग पक्षिणाम भक्ष कहे गए पशु और पक्षियों को पुरोडाशाह बभूव पुरोडास यज्ञ के लिए निर्मल अन्य आविष्यान्न बने हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसको प्रक्षिप्त मानते हुए कहते हैं कि 11 से लेकर 23 श्लोक तक सब प्रक्षिप्त हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंतर विरोध मिलता है। पहले कहते हैं सभी मछलियों को नहीं खाना चाहिए, फिर कहते हैं रोहू मछली को खा लेना चाहिए, इस प्रकार से इनमें अंतर विरोध है। दूसरा इसमें प्रसंग विरोध है, क्योंकि ये श्लोक प्रसंग विरुद्ध होने के कारण दही से बने पदार्थों में, घृत और घृत निर्मित पदार्थों में भक्षण का विधान, बीज के मांस भक्षण संबंधी वर्णन में प्रसंग को भंग कर देते हैं। इस प्रकार प्रसंग विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त माने गए। 5वां श्लोक जो प्रक्षिप्त नहीं मानते हैं, संख्या के अनुसार 24वां श्लोक जिसमें भगवान मनु कहते हैं, यत्किंचित स्नेह संयुक्तम भोग्यम भोग्यमगर्हितम यत्पर्युषतमावाप्याद्यम हविशेषम यद्भवेत हविशेषम च यद्भवेत। अर्थात अगर्हितम दोष रहित, अनिंदित अर्थात निंदित मांस आदि भोजन से रहित, और यत किंचित भोज्य स्नेह संयुक्तम, जो कोई खाने की वस्तु घृत इत्यादि में मिलाकर बनाई गई हो, तत परिषितम अपि वह बासी भी भोज्यम खाने योग्य होती है। यत हवि शेषम भवेत, यद यज्ञ की हवि बची हुई है उस वस्तु को भी आद्यम खा लेना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुंचते सर्व किल विषय, यज्ञ के बचे हुए भाग को खाकर प्राणी जो है सभी पापों से छूट जाता है, यान्ति ब्रह्म सनातन, ब्रह्म को प्राप्त करता है। 25वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं,
चिरस्यमपित्वाद्याम स्नेहा वक्तम द्विजातिभिः यवगोधूमजम सर्वम पयस्सश्चैव विक्रिया। अर्थात द्विजातिभिः, द्विजातियों को यव गोधूमम अजम सर्वम, जौ और गेहूं से बने हुए पदार्थ, च पयसः विक्रिया एव, और दूध के विकार से बने हुए खोया इत्यादि, मिठाई इत्यादि पदार्थ, अस्नेहाक्तम घृत आदि चिकनी वस्तु के मेल से न बने हो तो चिरस्थितम अपि देर से बने हुए भी आद्यम खा लेना चाहिए। अब 26वें श्लोक में भगवान मांस भक्षण की यज्ञीय विधि बताते हुए कहते हैं, एतद्युक्तं द्विजातीनां भक्षाभक्षमशेषतः मांसस्यात्र वक्षामि विदं भक्षणवर्जने। एतद्द्विजातीनां भक्ष अभक्षते अशेषत उक्तम, यह द्विजातियों का भक्ष और अभक्ष पूर्ण रूप से कहा गया, अतएव मांसस्य भक्षण वर्जने विधिं प्रवक्षामि, मांस के खाने और छोड़ने की विधि क्या है उसका मैं प्रवक्षामि अर्थात वर्णन करूंगा।
प्रोक्षितं भक्षयेन्मासं ब्राह्मणां च काम्यया यथा विधिं नियक्तस्तु प्राणानामेव चायै चात्ते।
अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रोक्षितुम मंत्रों से पवित्र जो मांस है, ब्राह्मणानां काम्यया ब्राह्मण की इच्छा हो तब, और यथा विधि नियुक्ता शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ के लिए अर्पित मांस और प्राणानाम अत्ययेव प्राणों के संकट में पड़ जाने पर मांसम भक्षेत, मांस को खा लेना चाहिए। क्योंकि जब प्राणों पर संकट आ जाए तो चाणक्य कहते हैं, आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, आपत्तिकाले में मर्यादा नहीं होती। अर्थात जब मनुष्य कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहां किसी भोजन इत्यादि की व्यवस्था मत ना हो, वहां पर यदि वह मांस खा लेता है तो उसमें दोष नहीं है। अगले श्लोकों में अर्थात 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि किन पदार्थों को जीवों के लिए बनाया गया है।
प्राणस्यान्न विदं सर्वं प्रजापतिरकल्पतं स्थावरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्।
प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने इदं सर्वं स्थावरं जंगमं, यह सब स्थावर जैसे शाक फल इत्यादि और चर पशु पक्षी आदि संसार, प्राणस्य अन्नम जीव के खाने के लिए अन्न रूप में, सर्वम प्राणस्य भोजनम सब कुछ जीव के भोजन के लिए अकल्पयत बनाया है।
चराणामन्नचराम दृष्टिणाम्यपि दृष्ट्यः अहस्ताश्च सहस्तानां सूराणाम चैव भीरवः,
अर्थात अचराः चराणाम स्थावर घास फूल फल इत्यादि खाद्य वस्तुएं चराह प्राणियों के, अद्रंष्टिणः द्रंष्टिणाम अर्थात द्रंष्टिणाम और अद्रंष्टिनाम दांत जाड़ से रहित प्राणियों और दांत जाड़ वालों व्याघ्र इत्यादि, अहस्ता हाथ से रहित मछली इत्यादि, सहस्ता नाम हाथ वाले मनुष्य इत्यादि के, भीरवाह शूराणाम डरपोक बहादुरों के अन्न अर्थात भक्ष्य हैं, क्योंकि नाता दुष्यतन यतनद्यान प्राणिनो हन्य हन्यपि धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोत्तार एव च, अत्ता खाने का अधिकारी मनुष्य, अद्यान प्राणिनः भक्ष प्राणियों को अहनि अहनि अपि अदन प्रतिदिन खाते हुए भी न तुष्यन्ति, अर्थात न दुष्यंति किसी पाप का भागी दोषी नहीं होता है, क्योंकि आद्याह प्राणिनः खाने के प्राणी च अत्तारः उसको खाने वालों को धात्रा एव सृष्टा परमात्मा ने बनाया ही है। यज्ञाय जगद्धर्मात्सस्य येतेष दैवो विधः स्मृतः अतोन्यथा प्रवत्तिस्तो राक्षसो विधिरुच्यते, अर्थात यज्ञाय मांसस्य जगद्धिः, यज्ञ के लिए मांस को खाना, इति एषः दैव विधि मृतः, यह देव विधि मानी गई है, अतः अन्यथा प्रवत्तिः तु, इससे भिन्न विधि का मांस खाना तो राक्षसः विधि उच्यते, राक्षस विधि कही गई। और 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कृत्वा स्वयं वान्युपाद्य परोपकृतमेव वा देवान् पितृश्चार्यत्वा खादन् मांसाम् न दुष्यति, अर्थात कृत्वा खरीद कर स्वयं अपि उत्पाद्यम वा अथवा स्वयं मार कर मांस तैयार करके, पर उपकृतम वा अथवा दूसरे के द्वारा भेंट दिए गए मांस को, मांसम मांस को देवांच पितृंच आर्चयित्वा खादन, भगवान को देवताओं को पितरों को अर्पण करके खाने से न दुष्यंति दोष नहीं होता है। नाद्याद विधिना मांसम विधिज्ञो ना परिद्विजः जगद्वाह्य विधिना मांसम प्रेत्यतैरद्यते वशः, अर्थात अनापदी आपत्ति के रहित काल में मांस विधिज्ञा द्विजः, मांस खाने की विधि को जानने वाला द्विज अविधिना उक्त विधि के बिना न अद्यात मांस को न खाए ही अविधिना मांसम जगदग्ध्वा प्रेत्यतैः अवशः अद्यति, क्योंकि विधि रूप से मांस विधि रहित रूप से मांस खाकर परलोकों में तैः उन खाए गए प्राणियों द्वारा अवशः अद्यति बलात् खाया जाता है, अर्थात वही प्राणी उसको खाते हैं। नतादृशं भवत्तेनाम मृगहंतुर्धनार्थिनः यदशं भवतिं भवति प्रेत्यं व्रथा मांसान् निखाद्यतः, धनार्थिनः मृगहंतुः धन के लिए पशुओं को मारने वाले व्यक्ति को, तादृशं एनः न भवति वैसा ही पाप नहीं होता, यादृशं जैसे व्रथा मांसानि खाद्यतः, देवताओं के उद्देश्य के बिना मांस खाने वालों को प्रेत्य मरने के बाद होता है, क्योंकि देवताओं के उद्देश्य से के बिना खाया गया मांस, उनको अर्पण किए बिना खाए गए मांस से प्रेत्य मिलती है और उनको दोष लगता है। इसलिए धन को मारने वाले, धन कमाने के कारण पशुओं को मारने वाले व्यक्ति को दोष नहीं लगता है, जैसा उस व्यक्ति को लगता है जो बिना देवताओं को अर्पण किए हुए मांस का भक्षण करता है।
न्योक्तस्तु यथा न्यायम् यो मांसम नाति मानवः स प्रेत्य पशुताम याति संभवानेक विंशतिम्।
अर्थात यह मानवः, जो भी मनुष्य यथा न्यायम नियुक्तः तु मांसम नान्ति, यथाविधि श्राद्ध या मधु पर मेंस मर्पित मांस को नहीं खाता, सह प्रेत्य एक विंशतिम संभवात पशुनाम याति। अर्थात 21 जन्मों तक मरकर 21 जन्मों तक पशुता को प्राप्त करता है, अर्थात पशुओं की योनियों में जन्म लेता है।
असंस्कृतान पशून मंत्रैर् नद्याद् विप्रः कदाचन, मंत्रैस्तु संस्कृतान नद्याः शाश्वतं विधिमास्थितः।
विप्रः, ब्राह्मण को चाहिए कदाचन कभी भी मंत्रैः असंस्कृतान पशून नद्याद्, बिना मंत्र के पवित्र किए पशुओं को मांस को नहीं खाना चाहिए। शाश्वतम विधिम आस्थितः, सनातन विधि में आस्था रखकर मंत्रैः संस्कृतानेव अद्यात्, मंत्रों से पवित्र किए गए मांस को ही खाना चाहिए, क्योंकि
कुर्यात् घृत पशुम संगम संगे कुर्यात् पिष्ट पशुम तथा नत्वेव तु प्रथा हन्तुम पशुमिच्छेत् कदाचन।
क्योंकि संगे पशु मांस खाने की अधिक इच्छा होने पर क्या करना चाहिए, घृत पशुम कुर्यात्, घी का पशु बनाकर खाए, अथवा पिष्ट पशुम कुर्यात्, चून का पशु बनाकर खा ले, किंतु कभी भी व्रथा एव यज्ञाद्य उद्देश्य के बिना पशुम हंतुम नतु इच्छेत, पशु को मारने की चेष्टा न करे। अर्थात इस श्लोक से सिद्ध होता है कि बिना यज्ञ के पशु मांस नहीं खाना चाहिए।
यज्ञार्थम पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा, यज्ञस्य भूते सर्वस्य तस्माद् यज्ञे बधो बधः।
स्वयंभुवा अर्थात स्वयंभूश्चतुरानना, ब्रह्मा ने स्वयं अपने आप पशवः पशुओं को यज्ञार्थम एव सृष्टा, यज्ञ के लिए ही बनाया है। क्यों? और यज्ञ सर्वस्य भूतेय, यज्ञ सबके कल्याण के लिए है। तस्मा, इस कारण से यज्ञ वधा अवधा, यज्ञ में किया गया वध अवध के समान अर्थात न मारने के समान है।
ओषध्यः पशवो वृक्षार तिर्यंच पक्षिणस्तथा यज्ञार्थम निधनम प्राप्ता प्राप्तोवन्त्युस्मृति स्मृता।
ओषध्यः, ओषधियां, पशवः पशु, वृक्षाः वृक्ष, तिर्यंच तिर्यक योनि वाले सर्प कछुए इत्यादि, तथा पक्षिणः पक्षी यज्ञार्थम निधनम प्राप्ता, यज्ञ के लिए मृत्यु प्राप्त होकर पुनः उत्सतीह प्राप्तवंती, उद्धार या उत्तम योनि को प्राप्त करते।
मधुपरके च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि
अत्रैव पशवो हिंस्त्या न यत्रेत्यन ब्रवीन मनुः। मधुपरके यज्ञे पितृ दैवत कर्माणि, मधुपर्क में, यज्ञ में, श्राद्ध और देवकर्म में। अत्र एव पशवा हिंस्या, केवल इन्हीं स्थानों पर पशुओं की हिंसा करनी चाहिए, अन्यत्र न। इति मनु अब्रवीत, अन्यत्र कहीं नहीं करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा था। ईश्वरथेषु पशून् हिंसन वेदस्तत्त्वार्थ विद्विजः आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमं गतिं। वेद तत्त्वार्थ विद् अर्थात ब्राह्मण, द्विजः एषु अरथेषु पशून् हिंसन, इन सब अवसरों में पशु को मारकर, आत्मानं च पशुं उत्तमां गतिं गमयत, खुद और वह जो मरने वाला पशु उत्तमम गतिम याति, उत्तम गति में जाते हैं। ग्रहे गुरावरणे वा निवशन्नात्मवन् द्विजः, द्विजः नानेव दहिताम हिंसाम अपद्यपि समाचरेत, आपद्यपि समाचरेत। अर्थात ग्रहे गुरौ वा अरण्ये निवसन, घर में गुरुओं के यहां अथवा जंगल में रहते हुए, आत्मना आत्मवान द्विजः, आत्मा की उन्नति पवित्रता चाहने वाला ब्राह्मण, आपदि अपि आपत्य काल में भी, आपद्यपि अवेद विहिताम हिंसाम न समाचरित, वेद विरुद्ध हिंसा को नहीं करना चाहे करता है, आचरित न समाचरित नहीं करना चाहिए। या वेद विहिताम हिंसाम नियतांस्मिश्चराचरे अहिंसामेव तान विद्यान वेदाधर्मो हि निर्धनो निर्वरो निर्बभो। अर्थात अस्मिन् चर अचरे, इस चर अचर पूरे संसार में, या हिंसा वेद विहिता नियता, जो हिंसा वेदों के विधान के द्वारा निश्चित की गई है, ताम अहिंसामेव विद्यात, उसको अहिंसा कहते हैं। विद्यात माने जानना चाहिए, क्यों? क्योंकि ही धर्मः वेदात निर्भव, धर्म से वेद से उत्पन्न हुआ, धर्म का आधार ही वेद है। इन सभी श्लोकों को विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं। 26 से लेकर 44वें श्लोक को विद्वान प्रक्षिप्त बताते हुए अंतर विरोध, प्रसंग विरोध, शैलीगत आधार, अवांतर विरोध इत्यादि कारणों को बताते हैं और वेद का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस प्रसंग में मांस भक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेप करने वाले ने वेद की आड़ ले ली है और मांस भक्षण को वेद विहित बताया है, किंतु ऐसे स्वार्थी लोग कहते हैं कि पापी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गीता से उदाहरण देते हैं, इसलिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ऐसा कहकर इन श्लोकों को जोड़ा गया है। 45वें श्लोक में निंदित भोजन मांस हिंसा मूलक होने से पाप है, इस प्रकार बताया गया है। भगवान मनु कहते हैं, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखे क्षया सजीवंस्तंश मृत्यश्च एव क्वक्षित सुखमेवति। अर्थात जो व्यक्ति आत्मसुख इच्छा, अपने आत्मसुख की इच्छा से अहिंसकानि भूतानि, कभी न मरने वाले योग्य प्राणियों की हिनस्ति हत्वा करता, हिंसा करता, हत्या करता है, सह जीवन चमृता, जीते हुए भी मरकर क्वचित सुखम न ईधते, जीते हुए और मरने के उपरांत भी कभी सुख नहीं प्राप्त करते। नायम लोकोस्ति न परलोकोस्ति, अर्थात न उनका इस लोक में कल्याण होने वाला है और ऊपर तो होने वाला नहीं है। 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो बंधन वध क्लेशान प्राणिनाम नचिकीर्षतः स सर्वस्य हृतेन प्रेप्सु सुखमंत्यंतमश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति प्राणिनाम बंधन वध क्लेशान च चिकीर्षति, प्राणियों को बंधन में डालने, वध करने, उनकी पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, सह वह सर्वस्य हित प्रेप्सु सब प्राणियों का हितैषी, अत्यंतम सुखम अश्नुते अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। यद्यायात यत्कुरते धृतिम बधनात यत्र च तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन। अर्थात यह जो व्यक्ति किंचन न हिनस्ति, किसी प्राणी को नहीं मारता, यत ध्यायति जिसका ध्यान करता है, यत कुरते और जो करता है, च यत्र धृतिम बधनाति जहां धैर्य युक्त मन को लगाता है, तत अयत्नेन अवाप्नोति वो उसको सुगमता से प्राप्त हो जाता, अर्थात जो चाहता है वो पा जाता है और जिसका ध्यान करता वो पा जाता है और जो भी करता उसमें सफलता मिलती है, जो किसी के साथ हिंसा नहीं करता। इसलिए अस्ते अहिंसा इन सब धर्मों को बताया गया है। ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसाम मांसमुत्पद्यते कुचित् न च प्राणिवधः स्वार्यस् तस्मान् मांस विवर्जयेत्। अर्थात प्राणिनाम हिंसाम अकृत्वा क्वचित् मांसम न उत्पद्यते, प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस नहीं प्राप्त होता, और प्राणिवधः जीवों की हत्या करना न स्वर्ग्यः सुखदायक नहीं होता। तस्मात् मांसम विवर्जित, मांस को ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा मनु जी कहते हैं। समुत्पत्तिम च मांसस्य बधबंधौ च देहिनाम प्रसमीक्ष निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। अर्थात मांसस्य समुत्पत्तिम, मांस की उत्पत्ति जैसे होती है देहिनाम बधबंधौ, प्राणियों की हत्या और बंधन के कष्टों को प्रसमीक्ष देखकर सर्वमांसस्य भक्षणात् सब प्रकार के मांस भक्षण से निवर्तित अर्थात दूर रहना चाहिए। 50वें श्लोक प्रक्षिप्त मानते हुए कहते हैं, न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् सच लोके प्रियतां याति व्याधिविश्चन पीड्यति। जो मनुष्य राक्षस के समान विधिम हत्वा अभक्ष भक्ष की विधियों को छोड़कर मांसम न भक्षयति अभक्ष मांस को नहीं खाता, सह लोके प्रियताम जाति वह लोक में प्रियता को प्राप्त करता है, क्योंकि व्याधि भी न पीड़ते और कभी भी वो रोगों से ग्रस्त नहीं होता। 50वां श्लोक प्रक्षिप्त मानते हुए विद्वान कहते हैं कि मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार का मांस ही निषिद्ध है, इसमें पिशाची और मनुष्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अतः यहां 50वां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। मांस भक्षण प्रसंग में 8 प्रकार की पापियों की गणना की गई है, वो कौन से हैं? तो कहते अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संसकर्ता च उपहरता चखादकश्चेति घातकाः। अर्थात अनुमंता मारने की आज्ञा देने वाला, विवशिता मांस को काटने वाला, निहंता पशुओं को मारने वाला, क्रय विक्रयी पशुओं को मार के बेचने वाला या खरीदने वाला, संसकर्ता पकाने वाला, उपहर्ता, परोसने वाला, च खादकः इति घातकः, ये सब हत्यारे होते हैं और पापी होते हैं।
स्वमांसं परमांसेन यो बधरयितुमिच्छति अनभ्यर्च पितृन् देवांस्ततोऽन्यो नास्ति पुण्यकृत्।
पितृन् देवान् अनभ्यर्च, पितरों और देवताओं को बिना पूजे यह व्यक्ति परमांसेन, जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के मांस से, स्वमांसं वर्धयितुम् इच्छति, अपने मांस को बढ़ाना चाहता है अर्थात पुष्ट होना चाहता है, ततः अन्यः अपुण्यकृत नास्ति, उससे बढ़कर कोई दूसरा पापी है ही नहीं।
वरसे वरसे स्वमेधेन योजयेत् शतं समाः मांसानि चनम खादेत् स्तयो पुण्य फलम समयम्।
अर्थात जो व्यक्ति शतम समा, सौ वर्ष तक, वर्षे वर्षे अश्वमेधेन यजेत, प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञों को करता है, च यह मांसानि न खादे, और जो मांस नहीं खाता, ततो पुण्य फलम समम, उन दोनों का पुण्य बराबर होता है। यहां पर इस श्लोक में मांस न खाने की महत्ता को बताते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर अश्वमेध यज्ञ करे और एक व्यक्ति केवल मांस न खाए, तो उन दोनों के पुण्यों की यदि तुलना की जाए तो मांस न खाने वाले व्यक्ति का पुण्य ज्यादा होगा।
फलमूला शनैर मेध्युर मन्यन्नानां च भोजनै न तत्फलमवाप्नोति यन्मांस परिवर्जनात्।
मेध्यैः फलमूल अशनैः, पवित्र फल फूल खाने से, और मुनि अन्नानां भोजनैः, निवार आदि मुनियों के अन्न चावल आदि खाने से, तत् फलम अवाप्नोति, वह पुण्य फल नहीं प्राप्त होता, यत मांस परिवर्जनात्, मांस के छोड़ने से होता है।
मांस मांसः भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः।
इदम् अहम् यस्य मांसम् अदिम् अमुत्र मांसमांस भक्षयिता। अर्थात इस जन्म में मैं जिसके मांस को खाऊंगा, अगले जन्म में वही व्यक्ति हमारे मांस को खाएगा। एतन् मांतस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं, यही मांस का मांसपन अभिप्राय है।
न मांस भक्षणे दोषो न मद्दे न च मैथुने प्रवत्तिरेषा भूतानां निवृत्त्यस्तु महाफला।
न मांस भक्षण खाने करने से दोष है, न मद्दे न शराब पीने में कोई दोष है, न च मैथुने किसी के साथ मैथुन करने में ही बुराई है नहीं, और ऐसा भूतानाम प्रवृत्ति, यह प्राणियों का स्वभाव ही है, किंतु निवृत्ति ही महाफला, इसकी निवृत्ति महाफल को देने वाली है, अर्थात इन्हें त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में बड़ा ही संशय छुपा हुआ है। कहते न मांस खाने से दोष है, न मदिरा पीने से दोष है, न मैथुन से दोष है, लेकिन इनको छोड़ देने से पुण्य मिलता है। तो इस आधार पर इन सब 52 से 56 श्लोकों को विद्वान प्रक्षिप्त घोषित करते हैं, क्योंकि 52वें श्लोक में विधि पूर्वक मांस भक्षण का विधान है, किंतु 56वें श्लोक में मांस भक्षण, तो क्या उसमें सहयोगी भी दोषी है, बनाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, मारने वाला, सब दोषी, आठ प्रकार के दोषी बताए गए। तो मनु ने स्पष्ट कहा है, वर्जयेत मधुमांशम च, अर्थात मधु मदिरा मांसम वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। फिर इन सबको इस प्रकार से कि न मांस भक्षण में दोष है इत्यादि दोषों को न बताते हुए कुछ विद्वानों ने, पूर्व अंतर्वर्ती विद्वानों ने इनमें श्लोक जोड़ा है, ऐसा विद्वान सिद्ध करते हैं। तथा 57वें श्लोक से भगवान मनु गृहस्थांतर्गत देह शुद्धि विषयों के बारे में बताते हैं। देह शुद्धिम प्रवक्षामि द्रव्य शुद्धिम तथैव च चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः, चतुर्णम अपि वर्णानां, अब मैं चारों वर्णों की अनुपूर्वशः क्रमशः, पहले देह शुद्धिम अर्थात शरीर शुद्धि संबंधी शुद्धि, और तदोपरांते च तथा एव, उसी प्रकार चारों वर्णों के लिए द्रव्य शुद्धिम, पात्र वस्त्र धन इत्यादि की शुद्धि को प्रवक्षामि कहूंगा। इस बारे में भगवान 58वें श्लोक से कहते हैं कि अशुद्धि के किन किन समयों में होती है, किन किन समय में सूतक लगता है, अशौच होता है। दंत जाते नुजाते च कृतचूणे च संस्थिति अशुद्ध्या बांधवा सर्वे सूचके च तथोत्थति तथोच्यते, अर्थात दंत जाते बालक के दांत निकलने के समय, और अनुजाते दांत निकलने के बाद, कृतचूणे मुंडन संस्कार के पीछे, संस्थिति मृत्यु हो जाने पर, सर्वे बांधवा अशुद्धा, सभी बंधु कुटुंबी अशुद्ध हो जाते हैं। तथा च, और उसी प्रकार उसको क्या कहते हैं, सूतके उच्चते, पुत्र उत्पत्त के समय भी सूतक होता है। दशाहम शावम आशौचम सपुंडेषु विधीयते अरवाक संचयनादस्थम त्रयत्रहमेकाहमेव च, अर्थात सपिंडेषु एक उदर या कुटुंब के लोगों में, शावम अशीवम अशौचम मृत्यु की शुद्धि, दस अहम अस्नाम संचयात अरवाक ही अहम वा एकम अहम एक एव विधीयते, दस दिन तक या अस्थि चुनने के पहले तीन दिन तक अथवा एक दिन तक विहित की गई है, अर्थात इसका वर्णन करते हुए 60वें श्लोक में सपिंडता और समानोदकता का भाव बताते हुए भगवान कहते हैं, सपंडितात पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदक भावस्तु जन्मनामोत्तरवेदने, जन्मनाम नोरवेदने, अर्थात सपिंडतातु सगापंतो सप्तमे पुरुषे विनिर्तते विनिवर्तते, सातवें पीढ़ी में समाप्त हो जाता है, तू समानोदक भाव घनिष्ठपन जन्म नामनो अवेदने, जन्म और नाम के ज्ञात रहने पर छूट हो जाता है। यथेदम शावम आशौचम सपिंडेषु विधीयते जनने पेवमेव स्यान् निपुणम शुद्धमिक्षताम, अर्थात जिस प्रकार इदम शावम अशौचम सपन पिंडेशु विधीयते, यह मृतक शुद्ध पिंडों के लिए विहित की गई है एवं उसी प्रकार निपुणम शुद्धिम इच्छताम भली भांत शुद्ध चाहने वालों के लिए जननी अपि स्यात् जन्म के समय भी होती है। 62वें श्लोक में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों के बारे में भगवान कहते हैं सर्वेषां साममा शौचम मात्रा पित्रोस्तु सूतकम सूतकम मातुरेव स्यात् उपस्रस्य पिता शुच शुचि ही सावम अशौचम सर्वेषां। मृतक शुद्धि सब कुटुंबियों के लिए है, क्यों? और सूतकम तो मात पित्रोह, किंतु सूतक पुत्र जन्म के लिए शुद्धि केवल माता पिता के लिए होती है, और जन्म देने की अशुद्धि तो वस्तुतः मातु हुए वस्यात केवल माता के ही होती है। पिता उपस्रस्य शुचि, पिता तो अशुद्धि के संपर्क में आने पर जल से धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है।